ओम शांति। हमारा अभी आदि रत्नों का जो सीरियल चल रहा उसमें दादा विश्व रतन जी का आज हम उनकी लाइफ हिस्ट्री समझो या उनकी जीवन कहानी हम सुनेंगे। जैसा दादा का नाम विश्व रतन दादा है, जैसा नाम वैसा ही आप यज्ञ के अमूल्य रतन थे। ऐसे ही पक्का बाल ब्रह्मचारी थे, ऑलराउंडर सेवादारी थे, जिनका उदाहरण बाबा मम्मा वरिष्ठ दादिया वरिष्ठ भाई भी देते थे। बाबा को ऐसे सपूत बच्चे ही चाहिए। हमेशा दादाजी जब भी बाबा कोई भी काम देता था उसको हाँ जी कर करता था। सदा त्यागी थे अपना यज्ञ की हर छोटी मोटी सेवाओं का भी खुद करता था। आप बाबा के वफादार ईमानदार फरमानबरदार पक्के बच्चे थे। बाबा का ऑफिस भी खुद संभालते थे बाबा अव्यक्त होने के बाद, और अकाउंट भी संभालते थे। दादा की हिस्ट्री थी। जब दादा ने देखो कई बार कई जो महात्माओं का हिस्ट्री में देखा गया, जो शुरू से बचपन से ही पता चलता है ये कोई महात्मा बनने वाला। इस तरह दादा का जीवन में भी जब बचपन से ही ये जहाँ भगवान आम भाषा में कहते हैं भगवान का नजर पूरा उनके ऊपर था। जब 3-4 साल का दादा था उस समय वो छोटे में था, माँ के साथ सोते थे, वहाँ लाइट भी नहीं होता था उन दिनों में कराची में। तो जब रात को सोए थे उस समय एक बड़ा चूहा आया, चूहा आके दादा का सिर पे आके बैठ के काट रहे थे। दादा कभी रोता नहीं था, वो उसके कारण दादा रोने लगा। माँ सोचा चलो दूध के कारण रो रहा होगा, बोल के दूध पिलाया, फिर भी रो रहा था। तो फिर उस समय फिर वो दूर में लालटीन था, वो लाके देखे तो बड़ा छुआ था। माना इस प्रकार उससे भी बाबा ने उनको, भगवान ने उनको भी रक्षा किया। माना उस जो शरीर छोड़ माना ऐसा बड़ा चूहा काटने के बाद भी उनको बच गया। माना फिर 3-4 साल के बचपन में, 6-7 साल का उम्र में भी वहाँ एक तालाब था, नहाने के लिए गया बाबा, वहाँ डूब दादा नहाने के लिए गया था, वो डूब रहा था। माना डूब गया था, कोई दूर से देखकर वहाँ भी बच गया। इस प्रकार भगवान ने कितने बार 3-4 बार उनकी लाइफ हिस्ट्री में दादा खुद जो बुक लिखा है उसमें बताया कि कितने बार शुरू से ही भगवान खुद हमको संभाला। माना इसका अर्थ है कि शुरू से उनके ऊपर नजर था। फिर जब वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के बाद वो पढ़ाई करते समय उसने पेपर में न्यूज पढ़ा था ओम मंडली का। ओम मंडली को ये क्या है माना बहुत एंटी कर रहे थे, एंटी कर रहे। तो उनके संकल्प आया ये क्या है, आखिर इतना एंटी क्यों कर रहे हैं, इतना ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, इनको देखना चाहिए, इनको सुनना चाहिए। फिर वो बाबा ने दादा ने खुद टाइम लिया, वहाँ टाइम लेके वहाँ गया, फिर वहाँ वो ओम मंडली का देखा, माना पूरा ज्ञान सुना 3-4 दिन तक। फिर उसको देखा इतने अच्छे लोग हैं, इनको क्यों लोग एंटी कर रहे हैं, इनको क्यों विरोध कर रहे हैं। इस भाव से दादा ने संकल्प चला इसका क्या है पूरा सुनना चाहिए। फिर पूरा दादा ने रेगुलर एक मास तक चलता रहा। फिर वहाँ ओम मंडली के एंटी ओम मंडली माना जो बाहर वाले होते एंटी कर रहे थे, एंटी ओम मंडली पिकेटिंग कर रहे थे। पिकेटिंग माना वो मंडली में कोई जाने नहीं देना, वो सब कर रहे थे, वहां रास्ते में ही बैठे रहते थे। दादा आया, मैं मुरली तो मिस नहीं करना है, कैसे करें, इधर उधर देखा, कैसे भी करके अंदर जाना है मेरे को, ऐसा करके दादा ने इधर उधर देखा, देख के कोई रास्ता दूसरा है क्या, वो देखा तो पीछे चले गया, मकान के पीछे जहां मुरली चलता था, तो पीछे गए तो एक छोटा सा गेट था, उसके अंदर से दादा ने अंदर गया, मुरली सुना, वहां सब लोग आश्चर्य कर रहे थे, मना ये कैसे आया, इतना बाहर विकेटिंग चल रहा। फिर उनको पूछा आप कैसे अंदर आए, बोला पीछे गेट से ऐसा इधर अंदर आया। माना इसका अर्थ है कि बाबा दादा को शुरू से लेकर एक लगन था ज्ञान के प्रति या बाबा के प्रति। फिर दादा ने फिर देखा ये घटना पूरा हुआ, फिर दादा को जब ये ज्ञान अच्छा लगा, फिर पढ़ाई भी पूरा किया, उसके बाद फिर दादा ने सोचा हम लोग तो अभी यहाँ ही रहे, अंदर रहकर समर्पण होकर सेवा करें, ये लक्ष्य अंदर था। एक बार क्रिसमस के दिनों में दादा ने जाके मम्मा को बोला ऐसा हमारा इच्छा है, यहीं रह के सेवा करेंगे, माना समर्पण होके सेवा करें। फिर मम्मा ने उनको बोला भले, उनका तीन भाई थे उसमें, तीनों भाई वहां सवेरे मुरली सुनना, फिर शाम को यज्ञ सेवा करना, ये सब चलता रहता था, बाजार से कोई चीजें लाके देना, ये सब हर प्रकार की जो भी यज्ञ की सेवा है वो सेवा करता रहता था। फिर जब समर्पण हुआ तो माना यज्ञ में रहने लगा भाई बंगले में, तो वो सवेरे 3:30 बजे उठ के दादा योग करता था, तो देखा गर्म पानी करने वाली एक बहन थी वहां, पानी गर्म करने के लिए एक ड्यूटी पे थी, देखा वो बहुत देरी से गर्म करती थी, तो दादा ने सोचा ये काम मैं करूं, उसके पास गया, बोला आप छोड़ दीजिए, मैं कल से आप निश्चिंत रहिए, मैं ये काम करूंगा, गरम करूंगा पानी, सबको मैं पहुंचाऊंगा। फिर ऐसा करके वो भी ड्यूटी, तब से कोई कहा नहीं दादा को, अपना बुक में लिखा है दादा ने, कोई कहा नहीं, मगर खुद ये अपना मना पानी गरम करने का ड्यूटी अपने आप लिया है। इस प्रकार कई प्रकार की ड्यूटियां दादा ने वहां करने शुरू कर दिया। फिर इसी प्रकार जब ओम मंडली का इतना पिकेटिंग चल रहा तो विश्व किशोर भाऊ ने बाबा को बोला ऐसा पिकेटिंग चल रहा, उसीलिए यहाँ कोई जैसा गेट के पास कोई पुलिसमैन चाहिए, तो बाबा को बोले, तो बाबा को पूछा किसको रखे, बाबा ने कहा विश्वरतन दादा को रखो, विश्वरतन दादा कोई पुलिस का अनुभव तो है नहीं, मगर विश्व किशोर भाऊ ने सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास लेके गया, बोला ऐसा हमारा यज्ञ का आप जानते हो ये पिकेटिंग चल रहा, इसका हम कोई पुलिस चाहिए, अच्छा यहाँ से लेके जाओ, बोला बाहर वालों को तो हम रख नहीं सकते, किसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, इस तरह बोले तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भाऊ ने उनको कॉम्प्रोमाइज किया, तो हमारा भाई को ही हम रखेंगे, तो वो ऐसा नहीं रख सकते आप, क्योंकि जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं है वो पुलिसमैन वहां रह नहीं सकता है। फिर उसने आखिरी कॉम्प्रोमाइज करने के बाद सुपरिटेंडेंट पुलिस या स्पेशल दादा को ट्रेनिंग किया, ऐसा चिट्ठी लिख के दे दिया, उनको फिर परमिशन मिल गया, तो दादा ने फिर उस समय वो लोग कपड़ा इपड़ा, वो पुलिस वालों का कपड़ा और वो सब देते हैं, तो वो कपड़ा दे रहा था, ये कपड़ा हम तो पहनते नहीं किसी की, फिर खास सब नया कपड़ा नया जुराब सब उनको दिया, वो बाबा को फिर वहां बाबा के बंगले के पास वो ड्यूटी भी दादा ने निभाया। तो एक बार क्या हुआ, दादा जो ड्यूटी कर रहा था तो ओम मंडली बोली दादी थी ना, बोली दादी उनका पति बहुत एंटी था, तो उसने क्या किया सारा गवर्नमेंट को बोल के दादा के ऊपर वारंट लेके आए दादा को अरेस्ट करने के लिए। तो दादा ये दादा को बाबा को पता चला, बाबा को पता चला, विश्वकिशोर बाहू को भी पता चला, तो बाबा से विश्वकिशोर बाहू ने राय किया क्या करना है। बाबा ने बोला जाओ इसका बेल छुट्टी लेके आओ। फिर बाहू गया, उसके मतलब सवेरे हुआ होगा बात दोपहर तक, फिर पुलिस वाले वहां आ गए गेट के पास। दादा तो अलर्ट और वहां कुर्सी टेबल डाल के बैठता था, वहां दादा बीच में मुरलियों का पॉइंट्स भी निकालता था, वहां एकदम मैं देखा शुरू से। ऐसी है नहीं, यहां भी हम देखते थे दादा को प्रैक्टिकल में, जब यहां कोई भी काम करते थे तो अलर्ट होकर काम करता था, कोई अलवेलापन उनके पास नाम निशान भी नहीं होता था। ऐ तो फिर क्या हुआ, जब वो लोग आए तो आपका बाबा के ऊपर वारंट लेके आया, बाबा से हमको बाबा को लेके जाना है। तो अच्छा आप बैठिए, मैं बाबा से बात करके आता हूँ। गया बाबा के पास, बाबा ऐसा ऐसा आया है। तो बाबा ने कहा उनको टाल दो, मना थोड़ा टाइम लेके बाबू आने तक उनको बातों में ये कर लो। फिर आया नीचे आके, बाबा अभी तैयार हो रहा, फिर वो एक घंटा हो गए, बाबा अभी उतर ही रहा होगा, वो बार बार कहे उतर ही रहा होगा। फिर उसके बाद थोड़ा देर के बाद बाबू आया, वो बेल लेके आया, उनके हाथ में थमा दिया, माना उनके हाथ में रख दिया। रखते ही वो लोग बहुत चिढ़ गए, ये दादा ने हमको अंदर जाने नहीं दिया है बोल के ऐसा उसके ऊपर गुस्सा कर दिया, गुस्सा करके चले गए। फिर वो दूसरा दिन वो पेपर में आया बड़ा अक्षरों से, माना इस प्रकार दादा कोई भी ड्यूटी एकदम अलर्ट होकर अपने अलर्ट होकर रहता था। फिर जैसे ही जो कहा ना गर्म पानी का ड्यूटी लिया था आपने, उसके बाद ये यहाँ, फिर बाबा इनको खरीदारी के लिए भी बेचता था, बाहर से सब्जियां भी खरीद करके लाता था। फिर कई प्रकार की एक ओम मंडली में तो कितने धोबी घाट भी किया और डॉक्टर भी बना, कोई ड्यूटी ऐसा नहीं है जो बाबा किया नहीं, हर प्रकार का सेवा दादा ने किया है। बाबा का यज्ञ का, मगर बाबा का यज्ञ का दादा ने कोई भी सेवा ऐसी किया जैसा दिल से, एक होता है सेवा करना, माना सेवा चलो सेवा मिला है समर्पण है तो करना है, दूसरा होता है दिल से करना, यज्ञ अपना समझकर करना। ये बाबा से प्रैक्टिकल बाबा का लाइफ में हमने यहां भी देखा, वो हिस्ट्री में भी पढ़े तो क्लियर पता चलेगा बाबा का बुक में दादा ने कितने प्रकार की सेवाएं किया। फिर बाबा एक दिन आया क्लास में मुरली चलाने के लिए, संदल पे बैठा, फिर साकार बाबा ने सुनाया, मैं आज वतन में अव्यक्त बाबा ने कल्पवृक्ष का दिखाया, कल्पवृक्ष का माना नक्शा दिखाया, इसको प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करें। बाबा सोच रहा था, अच्छा विश्वरतन दादा है, विश्वरतन बच्चा है, तो विश्वरतन दादा को बोला ये आप लेके आके इसका सारा कल करके लेके आना। फिर दादा ने कभी भी बाबा जो भी बात कहता था जी बाबा यही कहता था, मगर कभी ना नहीं किया। जैसे ही बाबा ने कहा दादा गया, उसके बाद वो सारा कल्पवृक्ष का मतलब पहले स्ट्रेचर बनाया, बना के बाबा के पास लेके आया। बाबा फिर रोज उसका करेक्शन करता था और रोज उसको चेंज करते रहते थे। दादा सुनाता है, बाबा का मंथन मेरा उंगलियां चलना, ये रोज चलता था। फिर कल्पवृक्ष एक दिन तैयार हो गया, उसके लिए मदद भी मम्मा के पास गया था अकेला, लास्ट में जब पूरा कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत लगता है ना उसका, फिर एक एक भरो कलर भरो, उसको वाटर पेंट था उस समय, तो भरने के लिए बाबा मम्मा के पास गया, हैंड्स लिया, हैंड्स लेके फिर उसको कंप्लीट करके बाबा के पास लेके आया। बाबा ने क्या बोला होगा दादा को, ऐसे वफादार ईमानदार फरमानवरदार बच्चे को क्या दिया होगा, शबाश बच्चे शबाश, शबाश बोल के बाबा ने दिया होगा। ऐसा लगता है कि बाबा उसके पीठ पे हाथ रख के ऐसा कहा होगा। तो फिर बाबा ने बोला ये चित्र बहुत अच्छा है, इसको 10-12 कॉपी 20 दिन के अंदर बना के लाओ। बाबा ने कहा, दादा ने कुछ भी नहीं सोचा, ठीक है जी बाबा, गया। फिर क्या करे, सोच रहा था अपने आप। फिर मम्मा के पास गया, मम्मा के पास गए तो मम्मा ने, बाबा ने ये कहा, ऐसा क्या करूं मैं। तो फिर मम्मा ने 10-12 हैंड्स दिया उनको, फिर वो भी इतना जल्दी वो काम होने वाला नहीं था, 10 दिन के अंदर इतना कापियां निकालना, इतना वो हाथ से वाटर पेंट भरना, मगर वो दिन रात करके वो सब मिलके वो चित्र भी तैयार किया। उसके बाद सृष्टि चक्र का भी चित्र ऐसी बनाया, उसके बाद त्रिमूर्ति का। इस प्रकार दादा ने अनेक प्रकार की सेवाएं, जो भी बाबा कहता था वो करता था, मगर कभी ये नहीं कहता था मैं थक गया, मैं कर नहीं सकता हूँ। मैंने एक बार बाबा दादा को पूछा, दादा आप अकाउंट ऑफिस में इतना काम करते हो तो थकते नहीं हो? बाबा ने ऐसी उत्तर दिया, दादा ने ऐसी उत्तर दिया, कहा एक काम किसका है, किसने बताया, कौन सेवा दिया है मेरे को, ये हम भूल जाते इसलिए थक जाते हैं। किसकी सेवा कर रहे हो, इस सेवा से क्या फल मिलता है। इतना दादा ने कम से कम 20 मिनट तक मेरे क्लास कराता रहा, मैं ऐसे सुनता रहा, क्योंकि पहले दादा वहां विशाल भवन में रहते थे, विशाल भवन में उनका कमरा था। तो फिर दादा ने बोला आप क्या समझते हो, हाँ ऐसे हो, बड़ा नशे से बोलता था दादा कोई भी बात, कभी भी कोई ऐसा ज्ञान का ऊपर नीचे बोले तो एक बार मैं ऐसी जा रहा था, थोड़ा चप्पल नीचे घिस रहा था, हाथ पकड़ लिया, बोला योगी हो, मैंने हाँ दादा ऐसा मैं कहा, कहते ही आप कहाँ से आ रहे, क्या कर रहे थे, मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या बोलना चाहता था दादा। तो जैसे ही बोला योगी जैसा चलना होता है, चप्पल घिसना नहीं चाहिए, ऐसा हाथ पकड़ के फिर समझाया, फिर अच्छा दादा मैं ध्यान रखूंगा ऐसा बोल के। फिर कई बार ऐसा होता था विशाल भवन में, वहाँ ठंडी के दिनों में दादा का टेबल बाहर वहाँ बगीचे में धूप में डाल के बैठ के ऑफिस का काम करता था, तो कभी दादा ये नहीं कहता था इधर आके टेबल उठाओ, ऐसा जोर से कभी नहीं बोला, उठा सकते हो, यहाँ रख सकते हो, मना एक होता है ऑर्डर करना, एक होता है मैं बड़ा हूँ वो उनको बोल के करा सकता हूँ, ये नहीं, भले बड़ा है मगर इतना वो नहीं करने वाला भी हाँ जी बोल के कर सकता था, ये गुण दादा के अंदर प्रैक्टिकल में हमने देखा। एक बार क्या हुआ, दादा हम लोगों का मधुबन वालों का क्लास चल रहा था, क्लास चल रहा था उस दिन दादी जी ने प्यूरिटी के ऊपर क्लास करा रहे थे, प्यूरिटी के ऊपर क्लास करा रहे तो बीच में कई बातें आई, दादी ने बड़ा जोर से बोला फिर प्रैक्टिकल देखना हो तो दादा को देखो, दादा का जो प्यूरिटी का इतना धारणाएं थे, कभी भी आंख उठा के किसी को नहीं देखता था, इतना तक छोटे बच्चों को गोद में लेना भी वो अच्छी बात नहीं है, इतना तक बाबा दादा ने समझाता था, माना कभी भी दादा का दृष्टि किसी के ऊपर पड़े, क्योंकि अकाउंट ऑफिस में इतने बहने जो पोता मेल का कारोबार चलता था उस समय दादा के पास कितने छोटे बड़े सब बहने आते थे, मगर उनको किसी प्रकार का मेरे से कभी भी किसी को दुख ना हो, मेरे तरफ से कभी किसी को मन रंज ना हो, जैसा कोई अरे दादा के सामने गए तो क्या होगा, अभी जब अकाउंट ऑफिस में बहने जाना है तो पहले थोड़ा सोचते क्या करे, हम तो गलती हो गए तो वहाँ कैसे जाए, उनके पास क्या बोलेगा। वहाँ दादा के पास तो ऐसे बहने जाते थे जो कभी भी कुछ भी बात हो दादा को बताते थे, फिर दादा उसका सेल्वेशन माना, उसको किस प्रकार से करना है ये सब बातें सहज रीति से उनको हल्का करके बेचता था दादा। फिर एक बहन को मैंने, एक टीचर बहन ने मेरे का अनुभव सुनाया, बहन जी आप दादा के पास गए थे, आप सवेरे मेरे को सुना रहे थे कि मैंने ऐसा गलती किया पोता मेल लिखने में, आप फिर दादा के पास क्या हुआ, डांट खाए? मैंने ऐसे पूछा, बोला दादा ने डांट नहीं खाया दादा से, मगर दादा ने इतना वो कागज लेके कैसा लिखना क्या करना वो कैसे इसको ये करना खुद बैठकर करके मेरे कागज पे फिर मेरे से साइन कराया। माना दादा का ये लक्ष्य होता था कोई भी ब्राह्मण कभी भी कुछ भी बात में मेरे से नाराज ना हो और मेरे से कभी सामने आने के लिए इच्छक ना हो, मेरे से बाब ऐ तो इसी प्रकार एक बार दादा का जो था चेवी माना दादा का जो पर्सनालिटी, एक बार मनोहर दादी कोई गेस्ट आए थे उनको अटेंड कर रही थी, मनोहर दादी अटेंड कर रहे तो विजिटिंग रूम में बिठाया, वो लोग कहा हम बाबा का दर्शन करना है, तो अच्छा बाबा को मैं पूछ के आती हूँ बैठो। उतने में दादा विश्वरतन अपना फरिश्ते का चाल से चाल चलन जैसा योगी जीवन था ऐसी चलते हुए वहां उनके सामने से गया, वो लोग उठ के यही इनका बाबा समझ के उनको ऐसे नमस्कार किया या कुछ ऐसा अपना हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो इतना प्रभाव पड़ता था दादा का जो चलन के और जो देखने की जो दृष्टि थे उनका, सब दूसरों के ऊपर ना चाहते हुए भी किंचावट होती, इनको देखे इनसे बात करें, जैसा अभी दादियों के पास एक सेकंड के लिए भी हम लोग खींच के एक बार दादी दृष्टि देवे ऐसा लगता है ना, इसी तरह दादा का भी, दादा का हम सवेरे से दिनचर्या यदि देखते हैं तो सवेरे 3:30 बजे उठने के बाद प्रैक्टिकल, मेरे को याद है मैं 1978 में जब मधुबन आया था, मधुबन आए तो मैं खास अमृत वेला योग के लिए हिस्ट्री हॉल में गया, जो दादा का जो बैठक का पोर्शन देखा माना जो बैठने का जो सिस्टम था एकदम अलर्ट होके स्ट्रेट होके बैठता था और एकदम आंखें जैसा शेर की तरह खुले रख के दृष्टि देता था, वो देखकर मेरे को एक प्रेरणा मिली कि मैं भी एक दिन ऐसा बैठकर योग कराऊंगा। शेर की तरह माना जो दादा भी कई बार सुना है मेरे को ये बात, जब योग करते हैं तो आंखें ऐसे ऐसे करते, कोई कोई ऐसा करता है कोई ऐसा करता है कोई ऐसा ऊपर चढ़ा चढ़ जाता है, ये नहीं, आंखें एकदम खुला हो दृष्टि देता हुआ हो एकदम लगे उसको एक कोई योगी बैठा है ऐसा महसूस हो, कि कई बार अमृत वेले का जो योग करते हैं कोई निद्रा योग होता है। दादा ने इस बात के ऊपर बहुत हम लोगों का, जैसा मधुबन वालों का क्लास हुआ उस समय दादी ने बोला, मधुबन वालों का जब क्लास हुआ तो चार ग्रुप बनी है उस समय, चार ग्रुप माना हर एक डिपार्टमेंट के चार प्रकार की, जैसा अकाउंट वाले अलग आवास निवास वाले अलग, ऐसा चार ग्रुप बने, तो दादा ऑफिस वालों का इंचार्ज था माना ऑफिस ग्रुप का, दादी ने कहा था इनको रोज क्लास कराओ, रोज वहाँ अभी जो फोटो स्टैट हुए वहाँ बाहर बैठते थे, दादा से लेन देन रोज करते थे, दादा ने एक दिन मुरली के ऊपर क्लास कराता था, कभी कैसा चाल चलन रहना उसके ऊपर क्लास कराता था, फिर एक बार अमृत वेले के ऊपर क्लास कराया, अमृत वेला कैसा योग करना चाहिए, दादा का भाव था अमृत वेले हम किस लिए योग करते हैं। हमने एक बार दादा को पर्सनल भी ये बात पूछा था, दादा अमृत वेला आप इतना अलर्ट होके योग करने का रहस्य क्या है, बोला हम किससे मिलने के लिए जाते हैं। सदा दादा एक ही शब्द बोलता था, हमारे साथ कौन बैठा है? बाबा साथ में बैठा है, बाबा देख रहा है, तो हमको नींद क्यों आती? सदा ये स्मृति में रहे। जब भी फिर दादा ने एग्जाम्पल दिया, एक बार कोई माता है, उसका बच्चा बीमार है, तो वो भी बीमारी है, माना वो माता भी बीमार है, वो बच्चा भी बीमार है, तो वो माँ को अपना देखेगी या बच्चे को देखेगी? कितना एकाग्र होकर बच्चे के ऊपर अटेंशन देती है। इस तरह हम किससे, बाबा से कनेक्शन किया ना, बाबा देने वाला हमारे सामने है, हम क्यों उस समय अलवेलापन होके अपना जो कमाई करने का समय हम नींद करें? इस तरह दादा ने कितने बार इस अमृत वेले के ऊपर मधुबन वालों का क्लास भी कराया, जब टीचर्स आते थे, पर्सनल टीचर्स जब मिलते थे, इस बात शुरू से लेकर दादा का मैं नहीं सोचता हूं कभी दादा अमृत वेला मिस किया होगा। इसी के कारण मेरे को प्रेरणा मूर्त बना, मेरे को वो संकल्प लिया, मैं जब 1978 में मैं भी ऐसा करके रहूंगा। आज तक भी उसी के कारण मैं 3:30 से 4 बजे योग कराने का ड्यूटी लिया। अकाउंट ऑफिस का भी दादा जब संभालता था, कई बार अकाउंट ऑफिस में कई बातें आपस में भी आते हैं, तो दादा उसका बैठकर सेल्वेशन निकाल के, माना कभी कुछ कोई बात है भाई वहां जगह की, वो सब बात पहले तो छोटा था ना, विस्तार होते गए तो फिर उस सब बातें अपने आप सबको बिठा के बात करके उसका सेल्वेशन निकालता था। माना किसी को कोई बड़ों के पास जाने की, ये एक होता है डिपार्टमेंट को ऊपर तक दादियों तक जाने की, मगर दादा वहां तक नहीं, अपने आप सबको इकट्ठा करके संगठन बनाकर चलता था। इस प्रकार दादा का सवेरे से अमृत वेले से लेकर मुरली में भी जब आता था दादा, मुरली में आया तो कोई दिन भी, कोई भी दिन ऐसा मुरली मिस किया हुआ नहीं। लास्ट समय भी हमने देखा यहाँ कॉन्फ्रेंस, ये ओम शांति भवन में, वहाँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आके बैठ के मुरली सुनता था। दादा का एक ही शब्द होता था कि कोई भी काम करो, बाबा का यज्ञ का वफादार, ईमानदार, फरमानदार बनकर काम करो, ना कि काम चलाओ, काम कभी नहीं करना, अपने अंदर अलवेलापन को कभी आने नहीं देना है। अलवेलापन आने का कारण बताया दादा ने, अपने मेरे से पर्सनल जब बात किया था, अलवेलापन आने का कारण हम क्या करते हैं कि जो बाबा ने कहा उसको उस समय सुन लेते, ठीक है चलो कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, ऐसा कर लेते, मगर कल तक होना नहीं। बाबा ने जब कहा, बड़ों ने कहा, ये शब्द कहा दादा ने, बड़ों ने जब कहा आज ही करो, उसमें आपको एक तो वरदान मिलेगा, एक तो उस कार्य करने की शक्ति भी मिलेगा। इसलिए कोई भी काम करो, यज्ञ का इतना ये करो, अपना समझ कर करो, तो इसमें एक तो आशीर्वाद मिलेगा, दूसरा उसका प्राप्ति का दुआएं भी मिलेगा, जो सेवा किया उनकी भी दुआएं मिलेगा। इस प्रकार दादा के कई बातें हैं, जैसा शुरू में यज्ञ में 2 बीघाट भी किया था, तो उस समय कोई भी एक बात थी, दादा जब ये सब कर रहे थे यहाँ काम, दिल्ली में सेवाएं बढ़ गए, तो वहां से फिर इनका बुलावा आया, दादा को भेजा वहां दिल्ली में, दिल्ली में भेजो, तो दादा दिल्ली में था थोड़े दिन, तो यहाँ विश्वरतन ये आनंद किशोर दादा था, तो उस दिल्ली में पहली बार दिवाली का ये फंक्शन करना था, तो आनंद किशोर दादा ने, बाबा भी वहां था दिल्ली में, तो आनंद किशोर दादा ने चिट्ठी भेजा, मेरा दिल है पहली बार दिवाली जो बना रहे दिल्ली में, सेंटर सभी खुल गया था उस समय, तो लिखे तो बाबा कहा किसको भेजे वहां, ऑफिस कौन संभालेगा, फिर बाबा ने दादा को भेजा, विश्वरतन दादा को, वहां ऑफिस संभालने के लिए। फिर आनंद किशोर दादा इधर आया, माना इस प्रकार कोई भी काम यज्ञ का रुक गया तो बाबा पहले इनको ऊपर दादा के ऊपर छोड़ देता था, जैसा चित्रों का इसका सब कोई भी काम के लिए पहले। माना दादा ने अपने शब्दों में एक बार बोला कि बाबा देखो कितना हमारे ऊपर उज्जत से सेवाएं देता है, हम ना करें ये कैसा हो सकता है। अभी भी हम प्रैक्टिकल देखते हैं, मेरे को याद है दादी जी एक बार हमको बुला के, ठंडी के दिनों में यहाँ बहुत ठंडी चल रहा था उस समय, विशाल भवन में ओपन प्लेस था, दादी ने बुलाया बाबा के पास से, आई नीचे, बोला अभी ठंडी बहुत चल रहा, आप सब वहाँ ठंडी लग रहा होगा, आप आके यहाँ चारों तरफ कनात बांधो। उस समय रात को 12 बज रहा था, तो फिर मैं आया सारा उठा के कनात बांध के फिर दादी को जाके बताया। दादी ने एक ही शब्द बोला, थैंक यू। माना मेरा बोलने का भाव यह है कि यज्ञ का कोई भी कार्य आप अपना समझ के और आज्ञाकारी समझकर जब करेंगे तो क्या होगा, दुआओं का पात्र बन जाएंगे और बाबा का नजर हमारे ऊपर सीधा रहेगा। इस प्रकार दादा के कितने भी सुनाएंगे तो भी कम है, मैंने शॉर्ट में इतना लेके आया। फिर लास्ट का समय था, जब लास्ट में दादा का दिनों में जब तबियत ठीक नहीं था उस समय दादा लास्ट जब जिस दिन शरीर छोड़ा था उस दिन आया था दादा, ऊपर आया, ऊपर आके चारों तरफ मना चारों धाम चक्कर लगाया, फिर अकाउंट ऑफिस में गया, सबको बुलाया, आधा घंटा बैठ के सबको योग कराया, योग कराकर फिर पूछा कोई काम तो नहीं है, फिर कोई नहीं काम नहीं है दादा बोल के बोले, तो दादा ने फिर नीचे गया, नीचे भी सब जगह योग किया, फिर लास्ट में जाके कमरे में, उस दिन ब्रह्मा भोजन था, ब्रह्मा भोजन का हर चीज खाया। खाने के बाद फिर थोड़ा देर के बाद दादा को उल्टी आया तो वो उल्टी किया, उसके बाद दादा वहीं पूरा हो गए। माना दादा का लक्ष्य होता था हर चीज का एक्यूरेसी होना चाहिए, कोई भी काम करते हो या यज्ञ का हो या स्थूल कार्य हो, सूक्ष्म हो या योग का हो, कोई भी चीज का अलर्ट रहकर, एक्यूरेट रहकर, रेगुलर पंचुअल रहकर करो, ना कि आप अलवेला होके कभी यज्ञ का सेवा ऐसा नहीं करो। ओम शांति।